वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375 प्रकरण 3 देशभाषा काव्य। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं वे संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जन साधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। राजा भोज, जस मूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के पद्य छप्पे में। राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थीं और भट्ट, चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा गया। भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अनहलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थीं। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ, अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्रवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यों ही मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। महमूद गजनवी मृत्यु संवत 1087 के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहां से लूट मार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपूताने पर चढ़ाइयां हुआ करती थीं। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सांभर अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अर्णो राज आना के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। अर्णो राज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां म्लेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था, इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्णो राज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो आना सागर कहलाया। आना के पुत्र बीसल देव विग्रह राज चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों पृष्ठ संख्या 18 की सेना चढ़ आई, जिसे परास्त कर बीसल देव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बीसल देव के विक्रम संवत 1220 के लेख से पाया जाता है। शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना ने नाड़ौल पर धावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हमीर देव हुए हैं, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया था। सारांश यह कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपये पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता था, वही सम्मान पाता था। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी था। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दल बल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में प्रधान रस वीर ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसलदेव रासो मिलती है, यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरीय भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियां मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बीसलदेव रासो के काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। एक, खुमान रासो। संवत 810 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के तीन राजा हुए हैं। कर्नल टॉड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि काल भोज बाप्पा के पीछे खुमाण गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा आल मामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुमाण की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमाण ने 24 युद्ध किए और पृष्ठ संख्या 19 विक्रम संवत 869 से 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। इस समय खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। काल भोज बाप्पा से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। काल भोज बाप्पा, खुमान, मत्तट, भर्तृपट, सिंह, खुमान दूसरा, महायक, खुमान तीसरा। काल भोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 तक है और तीसरे कुम्हार के उत्तराधिकारी भरत्रिपट दूसरे के समय के दो शिलालेख विक्रम संवत 999 और 1000 के मिले हैं। अतएव इन 190 वर्षों तक का औसत लगाने पर तीनों कुम्हारों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। कुम्हार पहला विक्रम संवत 810 से 865, कुम्हार दूसरा विक्रम संवत 870 से 900, कुम्हार तीसरा विक्रम संवत 965 से 990। अब्बासिया वंश का अलमामू विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपूताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयां होने लगी थीं। अतएव यदि किसी खुमान ने अलमामू की सेना से लड़ाई हुई होगी तो उसी के नाम पर खुमान रासु की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शिव सिंह सरोज के कथनानुसार एक अज्ञात नामा भाट ने खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का। दो, बीसल देव रासो। नरपति नाल कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम बीसल देव का समकालीन था, कदाचित यह राजकवि था। इसने बीसल देव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा है जो वीर गीत के रूप में है। ग्रंथ में निर्माण काल यों दिया है, 1272 मझारी जैठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ भई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। 1272 का स्पष्ट अर्थ है 1212। 72 शब्द बरहोत्तर द्वादशोत्तर का रूपांतर है, अतः 1272 का अर्थ द्वादशोत्तर अर्थात 1212 होगा। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है जिससे यह बीसल देव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव का समय भी 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 और 1220 के प्राप्त हैं। बीसल देव रासो में 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यूं है। खंड 1, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह होना। खंड 2, बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां एक वर्ष रहना। खंड 3, राजमती का विरह वर्णन तथा बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। खंड 4, भोज का अपने पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। दिए हुए संवत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बीसल देव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती हैं, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। इसमें दो ही घटनाएं हैं, बीसल देव पृष्ठ संख्या 20 का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। बीसल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था, बीसल देव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है, अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और इस आधार पर इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ बीसल देव का विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया हो। जैसे जननी गोरी तू जैसलमेर गोरड़ी जैसलमेर की। आबू के परमार भी राजपुताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ अचारज कवि कालिदास। जैसा पहले कह आए हैं, अजमेर के चौहान राजा बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ बड़े वीर और प्रतापी थे। और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थीं और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और हांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह राज नाटक संस्कृत में है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है और राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नाल के इस बीसल देव रासों में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का प्रोषित पतिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बिसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। जैसे सुकई छ सूखता है, पाटण थी पाटर्न से, भोज तणा भोज का, खंड खंडरा खंड खंड का, इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है। वह यह कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। बीसल देव रासों में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मेलवी मिलाकर जोड़कर, चितह चित्त में, रणी रण में, प्रापी जयी प्राप्त हो या किया जाए, इणी विधि इस विधि, ईसऊ ऐसा, बाल हो बाला का, इसी प्रकार नयर नगर, पसाऊ प्रसाद, पयोधर आदि प्राकृत शब्द भी हैं जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक होता रहा। इसमें आए हुए कुछ फारसी अरबी तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल इनाम नेजा ताजनो ताजियाना आदि। जैसा कहा जा चुका है, पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है, अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भर हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। बीसल देव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं। महल पलाण्यो तांज दीन खुरसाणा चढ़ी चाल्यो गोंड। उपयुक्त विवेचनों के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने इसे हमीर के समय पृष्ठ संख्या 21 की रचना कहा है। राजपुताने का इतिहास भूमिका पृष्ठ 19। यह नरपति नाल की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है राजपुताने के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे माती का आखा किया, चंदन काट का माणवो, सोना की चोरी, मोती की माल इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि साहित्य से संबंध रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। बीसल देव रासों के कुछ पद्य देखिए। प्रणब एक, चाल्यो बीसल राय, चौरास्या दो, सहु तीन लिया बोलाई, जान तणी चार, साजती करौ, जीरह रंगावली पहरज्यो टोप, हुआ पैसारऊ बीसल राव, आवि सयल पाँच, अंतेवरी छे राव, रूप अपूरब पेशियई, इसी अस्त्री नहीं सयल संसार, अति रंग स्वामी सु मिली राती, बेटी राजा भोज की, गर्भ करी ऊंघो साथ, छई सांभरियो राव, मोसरीखा नहीं उर भुवाल, महाघरी आठ सांभर उगई, चिहु दिसी थाण जैसलमेर, गरबी न बोलो हो सांभरियो राव, तो सारीखा घना और भुवाल, एक उड़ीसा को धनी, बचन हमारई तू मानी जु मानी, यूं थारई दस सांभर उगहई, राजा उणी घरी उगहई हीरा खान, कुंवरी कहई सुनी सांभरिया राव, काई ग्यारह स्वामी तू उल्ल गई, बारह जाई, कहऊ हमारौ जय सुणौ, थारई छई तेरह साठी अंतेवरी नारी, कड़वा बोल न बोलिस नारी, तुमो मेल हसी चौदह चित्त बिसारी, जीभ न जीभ बियो बिगोयनो पंद्रह, दव का दाधा कुपली मेल हई सोलह, जीभ का दाधा नू पांगुरई सत्रह, नाल कहई सुनी जय सब कोई, आव्यो राजा मास बसंत, गढ़ माही गूड़ी उछली अठारह, जय धन मिलती अंग संभार, मान भंग हो तो बाल हो उन्नीस, इणी परी रहता राज दुआरी बीस। एक ब्याहने, दो सामंतों को, तीन सब, चार यान की बारात की, पाँच सब, छः अंतःपुर, सात खड़ा है, आठ घर में, नौ स्वामी राजा, दस तुम्हारे यहाँ, ग्यारह क्यों, बारह परदेश में, तेरह तेरे हैं, चौदह भुला डाला, पंद्रह बात से बात नहीं छिपाई जा सकती, सोलह आग का जला कोपल छोड़ दे तो छोड़ दे, सत्रह जीव का जला नहीं पनपता, अठारह आकाश दीप जलाए गए, उन्नीस यदि वह धन्या या स्त्री अंग संभाल कर तुरंत मिलती हो तो उस बाला का मान भंग होता, बीस और इसे परिरंभता आलिंगन करता राजा द्वार पर ही। चंद बरदाई संवत 1225 से 1249। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और उनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा व्याकरण, षड्भाषा, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं पृष्ठ संख्या 22 में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय सर्ग या अध्याय हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद हैं कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहण द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहण के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जलहण के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है। पुस्तक जलहन हथ दे चली गज्जन नृपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरिय जिमि, पृथ्वी राज सुजस कवि चंद कृत नंद चंद नंद उद्धरिय तिमि। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से चार क्षत्रियों कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुंवर यानी तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल की दो कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपनी नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक दिन रात सूर्य यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राज सूर्य यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाल लेकर रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे के महल में भेज दिया। उधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गांधर्व विवाह किया और अंत में वे उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा, राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। बल का बहुत कुछ हास तो जयचंद तथा और राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देख शहाबुद्दीन चढ़ आया, पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़ कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कविचंद भी गजनी पहुंचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के वैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हार कर पृथ्वीराज के पास भाग आए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियो का धर्म है, अतः हम इन दोनों की बराबर रक्षा करेंगे। इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयां की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र पृष्ठ संख्या 23 हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की गाथाएं रासों में भरी पड़ी हैं। ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों के पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राज्यसभा के काश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिलता है। उसमें दिए संवत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है, जिसका समर्थन हासी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हम्मीर महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। इस प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि चार अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्नि कुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। चंद ने पृथ्वीराज का जन्म काल संवत 1115 में, दिल्ली गोद जाना 1122 में, कन्नौज जाना 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में लिखा है। पर शिलालेखों और दान पत्रों में जो संवत मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं हैं। अब दान पत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज जयचंद और परमर्दी देव महोबे के राजा परमाल के नाम आए हैं इस प्रकार मिले हैं। पृथ्वीराज के चार जिनके संवत 1224 और 1244 के बीच में हैं, जयचंद के 12 जिनके संवत 1224 और 1243 के बीच में हैं, परमर्दी देव के 6 जिनके संवत 1223 से 1258 के बीच में मिले हैं। इनमें से एक संवत 1239 का है जिसमें पृथ्वीराज और परमर्दी देव राजा परमाल के युद्ध का वर्णन है। इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक पुष्टि फारसी तवारीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी विक्रम संवत 1248 ईस्वी सन 1191 में हुआ। अतः इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने रासों के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि रासों के सब संवतों में यथार्थ संवतों से 90-91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिए हुए उन्होंने रासों के इस दोहे को पकड़ा। एकादश से पंचदह विक्रम साक अनंद तिहि रिपुजय पुर हरण को भय पृथ्वीराज नरिंद, और विक्रम साक अनंद का अर्थ किया अ शून्य और नंद नौ अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए गए इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदवंशी शूद्र थे इसलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाटों ने निकाल दिया, इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए। पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार का समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संवत में से कुछ काल निकाल कर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर यह भी विचारणीय है कि जिस किसी प्रचलित विक्रम संवत में से 90-91 वर्ष निकालकर पृथ्वीराज रासो में संवत दिए हैं उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया है अथवा धोखे से या भ्रम में पड़कर। ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें आनंद के पृष्ठ संख्या 24 स्थान पर कुछ लोग अनिंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा यह भी मिलता है, एकादश से पंचदह विक्रम जिस ध्रम सुत प्रतीय साक पृथ्वीराज को लश्यो विप्र गुण गुत्त, इससे भी 9 के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया है। पर कितने में से 9 कम करने से यह तीसरा शक बनता है यह नहीं कहा है। दूसरी बात यह कि गुणगुप्त ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है। बात संवत की ही नहीं है, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलट फेर नहीं किया जाता। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्य चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता और इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं और कुछ संवत तो ठीक होते। रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है, चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिया है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है, तनयश चंद्र राजस्य चंद्र राज इवा भवत संग्रहम यस्वृत्तानाम सुवृत्तानाम व्यधात। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है वह राय बहादुर श्रीयुत पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि हैं, जिसका उल्लेख काश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद बरदाई नाम का कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भणंत तैयार होता गया उन सबको लेकर और चंद को पृथ्वी का समसामयिक मानकर उसी के नाम पर रासो नाम की वह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कुछ कवित्वों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाक जाल के बीच कहां पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास से और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपुताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थी। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपुताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर पृष्ठ संख्या 25 बसाया था और वहीं बहुत सी भूमि चंद को दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानू राम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई। उसमें उन्हें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है। चंद बरदाई के पुत्र गुणचंद और जलचंद, जलचंद के पुत्र सीताचंद, सीताचंद के पुत्र वीरचंद, वीरचंद के पुत्र हरिचंद, हरिचंद के पुत्र रामचंद, हरिचंद के 6 पुत्र विष्णुचंद, उद्धरचंद, रूपचंद, बुद्धचंद, देवचंद, सूरदास। बुद्धचंद के 2 पुत्र खेमचंद और गोविंदचंद, गोविंदचंद के पुत्र जयचंद, जयचंद के 3 पुत्र मदनचंद, शिवचंद, बलदेवचंद, मदनचंद के 2 पुत्र चौथचंद, बेनीचंद, बेनीचंद के 3 पुत्र गोकुलचंद, वसुचंद, लेखचंद, गोकुलचंद के 1 पुत्र कर्णचंद, कर्णचंद के 2 पुत्र गुणगंगचंद, मोहनचंद, मोहनचंद के पुत्र जगन्नाथ और रामेश्वर, रामेश्वर के पुत्र गंगाधर, गंगाधर के पुत्र भगवान सिंह, भगवान सिंह के पुत्र कर्म सिंह, कर्म सिंह के पुत्र माथुर सिंह, माथुर सिंह के पुत्र वाग गोविंद सिंह, वाग गोविंद सिंह के पुत्र मान सिंह, इनके पुत्र विजय सिंह और विजय सिंह के पुत्र आनंद राय जी, आनंद राय जी के 5 पुत्र आसो जी, गुमान जी, कर्णीदान, जैथमल जी और बीरचंद जी, कर्णीदान के 2 पुत्र घमंडी राम जी, बुद्ध जी, घमंडी राम जी के पुत्र वृद्धिचंद जी, वृद्धिचंद जी के पुत्र नानू राम जी। नानू राम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से 1 मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अंभोर में जा बसे और चौथे का वंश नागौर में चला। पृथ्वीराज रासों में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है। दहति पुत्र कवि चंद के सुंदर रूप सुजान, इक जल गुण बावरो गुण समुद्र ससभान। पृथ्वीराज रासों में कविचंद के 10 पुत्रों के नाम दिए गए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है, वह पद यह है। पृष्ठ संख्या 27। प्रथम ही प्रथु यज्ञ से भे भट्ट भे प्रगट अद्भुत रूप, ब्रह्म राव विचारी ब्रह्मा राखो नाम अनूप, पान पय देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कहयो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय, पारिपायन सुरन के सुर सहित अस्तुति कीन, तासु वंश प्रशंस में भव चंद चारु नवीन, भूप पृथ्वी राज दीनो तीन्हें ज्वाला देश, तनय ताके चार कीनो प्रथम आप नरेश, दूसरे गुणचंद ता सुतशील चंद स्वरूप, वीर चंद प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप, रणथंबोर हमीर भूपति संगत खेलत जाय, तासु वंश अनुपभो हरिचंद अति विख्याय, आगरे रहे गोपचल में रहयो ता सुतवीर, पुत्र जन्मे सात ताके महाभट गंभीर। कृष्ण चंद उदार चंद जू रूप चंद सुभाई, बुद्धि चंद प्रकाश चौथे चंद भे सुखदाई। देव चंद प्रबोध संसत चंद ताको नाम, भयो सप्तो नाम सूरज चंद मंद निकाम। इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानू राम ने जिनको जल्ल चंद की वंश परंपरा में बताया है, उक्त पद में उन्हें गुण चंद की परंपरा में कहा है, बाकी नाम प्राय मिलते हैं। नानू राम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा था। उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। नानू राम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी वह और भी उटपटांग और रद्दी है। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ पद्य नमूने के लिए दिए जाते हैं। हिंदुवान थान उत्तम सुदेश, तह उदित द्रुग दिल्ली सुदेश, संभरी नरेश चहुआन थान, पृथ्वीराज तहां राजंत भान, संभरी नरेश सोमेश पूत, देवत्व रूप अवतार धत्त। एक जिही पकरी साह साहब लीन, तिहुं बेर करिय पानी पहीन, सिंगी निसुसद गुनी चढ़ी जंजीर, चुक्कई न सबद बेधंत तीर। दो मनहु कला ससभान तीन, कला 1600 बन्निय, बाल बैस ससिता समीप अमृत रस पिन्निय, विगसी कमल श्रृग भ्रमर बेनु, खंजन मृग लुट्टिय। चार हीर कीर अरुबिंब मोती, नखसिक अहि घुट्टिय। पाँच एक धृत धारण किया। दो शब्द वेधी बाण चलाने का उल्लेख, सिंगी बाजे का शब्द सुनकर या अंदाज कर डोरी पर चढ़ उसका तीर उस शब्द को बेधते हुए बिधने में नहीं चूकता था। तीन चंद्रमा। चार उसी के पास से मानो अमृत रस पिया। पाँच अभिघटित किया बनाया। पृष्ठ संख्या 28। कुटिल केस सुदेश, पोह परिचियत पिक सद। एक कमल गंध वयसंध, हंस गति चलित मंद मंद, सेत वस्त्र सोहै शरीर, नश स्वाति बूंद जस, भ्रमर भवहि भुल्लहि स्वभाव, मकरंद बास रस। प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिखी कग्गर, दो दिन्नो लगन बरब रची, सरव दिन द्वादश ससि लिन्नो, सै 11 अरुतीस शास संवत परमानह, जो पित्री कुल शुद्ध बरन बरी रखहु प्राणह, दिखंत दिट्ठी उच्चर्य तीन, वर इक शल्लक विलंब न करिय, अलगार 4 रयनी दिन पंच मही, ज्यो रुकमिनी कन्हर बरिय, संगह 5 शशियलिय सहस बाल, रुकमिनिय जेम 6 लज्जत मराल, पूजियई गौरी शंकर मनाय, दक्षिण अंग करी लगिय पाए, फिरी 7 देशी देशी पृथ्वीराज राज, हसी मुद्ध मुद्ध चरपट लाज। 8 बज्जीय घोर निशान रान, चौहान चहौ दिस, सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र तिस, उट्टी राज पृथ्वीराज बाग, मनो लग वीर नट, कढ़त तेग मन बेग लगत, मनो बीज झट घट, थकी रहे सूर कौतिक गगन, रंगन मगन भई शोन धर, हृदि 9 हरषि वीर जग्गे हुलसि हु रेउ, 10 रंग नव रत, 11 वर, शुरासान मुल्तान खंदार मीरम, बलशस्यो 12 बलम तेग अच्चूक तीरम, रुहंगी फिरंगी हलब्बि सुमानी, ठटी ठट भल्लोच ढालम निशानी, मंजारी चशी 13 मुख जम्बुक लारी 14 हजारी हजारी हुंके 15 जोध भारी। 4 से 5 भट्ट केदार। 1 पोहे हुए अच्छे मोती दिखाई पड़ते हैं। 2 कागज। 3 चल दीजिए। 4 अलग ही अलग दूसरी ओर से। 5 मध्य मधि में। 6 जिमी ज्यों। 7 प्रदक्षिणा। 8 हंसकर उस मोहित मुग्धा ने लज्जा से मुंह पर का पट चला दिया। अर्थात सरका लिया। 9 हृदय में। 10 फुर्यो स्फुरित हुआ। 11 रक्त। 12 सांस। 13 बिल्ली की सी आँख वाले। 14 मुंह गीदड़ और लोमड़ी के से। 15 हुंकार भरते। 16 भट्ट भड़ंत पर यदि विश्वास किया जाए तो केदार महाराज जयचंद के कवि नहीं सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी के कविराज थे। शिव सिंह सरोज में भाटों की उत्पत्ति के संबंध में यह विलक्षण कवित्व उद्धृत है। प्रथम विधाता ते प्रगट भय बंदी जन, पुनि पृथुयज्ञ ते प्रकाश सरसात है। माने सूत सौनक न बाचत पुराण रहे, जसको बखाने महासुख सरसात है। चंद चौहान के केदार गोरी साहूजू के, गंग अकबर के बखाने गुण गात है। काव्य कैसे मास अजनास धन भाटन को, लूटी धरे ताको खुरा खोज मिटी जात है। मधुकर कवि संवत 1224 से 1243। जिस प्रकार चंद बरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जय चंद का गुण गाया है। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जय चंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज जय चंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। 16 इसी प्रकार का जय मयंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा था, पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। केवल इनका उल्लेख सिंघायच दयाल दास कृत राठौड़ा रिख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। पृष्ठ संख्या 29। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों राठौरों का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कन्नौज थी और जिसके अंतर्गत प्रायः सारा मध्य देश काशी से कन्नौज तक था। दूसरा चौहानों का, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राजा काशीराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपुताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कालिंजर या महोबे के चंदेल राजा परमर्दी देव परमाल जयचंद के मित्र थे या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। 6 जगनेत संवत 1230। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनेक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के दो देश प्रसिद्ध वीरों आला और उदय सिंह के वीर चरित का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज के साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गाँव गाँव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। गांवों में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अलहैत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीर दर्प पूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक किरिच, देशों और जातियों जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए हैं और बराबर हो जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इसमें पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता के ही बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आल्हा का प्रचार यूं तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैंसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। वहां इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषता महोबे के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आल्हा खंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आल्हा संबंधी ये वीर गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आल्हा खंड के नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहले पहल इन गीतों का संग्रह करके 60-70 वर्ष पूर्व छपवाया था। 7. श्रीधर। इन्होंने संवत 1454 में रणमल्ल छंद नामक एक काव्य रचा, जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल्ल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद्य नीचे दिया जाता है। ढम ढमई ढम ढम कार ढंकर ढोल ढोली जंगिया सुर करही रण सहनाई समुहिर सरस रसी समरंगिया कल कलही काहल कोडी कल रवि कुमल कायर थर हरई संचरई शक सुरताण साहण साहसी सवि संग रई।